संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में।
बड़े भावनाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें धर्म भावना की बात करनी है। और धर्म का अनेक रूपों में जैन दर्शन में विवेचन हुआ है, जिसमें सबसे मुख्य रूप है रत्नत्रय का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आचार्य समंत भद्र ने 1900 वर्ष पहले जब धर्म की परिभाषा दी तो उसमें यही लिखा है कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको धर्म के ईश्वर धर्म कहते हैं। धर्मेश्वरा धर्मम विदु, धर्म के ईश्वर इन्हें धर्म कहते हैं। यदि ये प्रत्यनीकानी और यदि ये उल्टे हो जाएं, माने सम्यक दर्शन का मिथ्या दर्शन हो जाए, सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान हो जाए और सम्यक चारित्र का मिथ्या चारित्र हो जाए, तो यदि ये प्रत्यनीकानी यदि ये उल्टे हो जाएं, तो भवन्ति भव पद्धति, तो ये संसार को बढ़ाने वाले होते हैं। इसी श्लोक के ठीक पहले एक श्लोक उन्होंने लिखा और उसमें एक प्रतिज्ञा वाक्य है उनका, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्यणम, क्या देशयामि समीचीनम धर्मम, मैं उस सच्चे धर्म को कहूंगा। देशयामि माने कहूंगा, उपदेश दूंगा। देशयामि समीचीनम धर्मम, मैं उस सच्चे धर्म की बात करूंगा। सच्चा धर्म कैसा है कि कर्म निवारणम, के जो कर्मों का नाश करने वाला है, ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का नाश करने वाला है, राग देश मोह आदि भाव कर्मों का नाश करने वाला है, जो कर्म का निवारण करने वाला धर्म है, मैं उसकी बात करूंगा, मैं उसकी चर्चा करूंगा आपसे। क्यों कि देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम, संसार दुख तथा सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, कि जो धर्म संसार के दुखों से निकाल कर इस जीव को उत्तम सुख में पहुंचा दे, यो धरति उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में पहुंचा दे, उत्तम सुख माने मुक्ति का सुख, अतीन्द्रिय आनंद जो अरहंत सिद्ध भगवान को प्राप्त है, ऐसे आनंद में जो पहुंचा दे, मैं ऐसे धर्म की बात तुमसे कहूंगा। और उसी के अगले श्लोक में उन्होंने ये लिखा है कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, उनने जो प्रतिज्ञा की थी कि जो संसार समुद्र से पार तेरे को कर दे, मैं उस धर्म की बात करूंगा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ऐसे ही धर्म हैं कि जो हमें संसार समुद्र से पार उतार दे। उन्होंने वो धर्म की चर्चा कर दी। और इसी की टीका पंडित सदाशिव दास जी ने लिखी आज से 100-150 वर्ष पहले, तो उन्होंने इस श्लोक के अर्थ में ये बार बार लिखा कि ये धर्म उपवास करने से नहीं होगा, तीर्थ यात्रा करने से नहीं होगा, भक्ति करने से नहीं होगा, दान देने से नहीं होगा, ये बहुत बातें, लंबी चौड़ी बातें उन्होंने कम से कम अनेक पेजों में वहां पर एक खुलासा किया कि ये धर्म नहीं है। धर्म तो कोई और चीज है। गुजराती के एक कवि ने तो ऐसा लिखा है कि धर्म न बाड़ी नी पे जे, धर्म न हाटे बिकाए, धर्म विवेके नी पे जे, जे समझे ते थाए। क्या अर्थ है इसका? यद्यपि गुजराती में है लेकिन सरल है, हिंदी वाले भी समझ सकते हैं। कि धर्म न बाड़ी नीपजे, धर्म किसी खेत में पैदा नहीं होता। बाड़ी माने जिस खेत पर चारों तरफ बाड़ लगी है ना, कोई पशु पक्षी उसमें खेत में नुकसान पहुंचाने, खाने पीने नहीं आ सकते हैं, घास समझकर अनाज को की पैदावार को खाने नहीं आ सकते, उसे बोलते बाड़ी। कि धर्म न बाड़ी नीपजे, धर्म ऐसी चीज नहीं है जिसे खेत में पैदा हो गेहूं चना जैसी। और धर्म न हाटे बिकाए, और धर्म कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है कि जब हम मोल लेके पैसा देके लेके आ जाएं। धर्म न हाटे बिकाए, और धर्म विवेक नीपजे, धर्म तो विवेक में पैदा होता है। हर चीज में हमारा विवेक, विवेक माने भेद विज्ञान, विवेक माने हर बात का सच्चा निर्णय, अच्छा काम करने लायक कौन है और नहीं करने लायक कौन है, ऐसा अंदर में विवेक होना, उसका नाम है विवेक। तो धर्म में विवेक नीपजे, धर्म तो विवेक में पैदा होता है, भेद विज्ञान में पैदा होता है। जैन दर्शन तो कहता है ना, भेद विज्ञान तह सिद्धा, सिद्धा एकल केचना, अस्य भाव तो बद्धा, बद्धा एकल केचना। आज तक जितने जीव हैं वो भेद विज्ञान के बल से सिद्ध हुए हैं, और आज तक जीव जो संसार में रखड़ रहे हैं वो भेद विज्ञान के अभाव से ही रखड़ रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है, धर्म तो विवेक में उत्पन्न होने वाली चीज है। और मार्मिक बात, असली आत, अंतिम बात, कि जे समझे ते थाए, जो इस आत्मा को समझ लेंगे वे धर्मात्मा हो जाएंगे। क्या? जे समझे ते थाए, धर्म को जो समझेंगे वे धर्मात्मा हो जाएंगे। माने रत्नत्रय धर्म को जो समझेंगे, और रत्नत्रय धर्म कैसे पैदा होता है, किसके आश्रय से पैदा होता है, है ना? तो रत्नत्रय भगवान आत्मा के आश्रय से पैदा होता है, तो अपने आत्मा को समझ लेंगे तो जो समझ लेंगे वे धर्मात्मा हो जाएंगे, जो नहीं समझेंगे वे धर्मात्मा नहीं होंगे। कोई क्रिया करने से धर्मात्मा हो जाएंगे ऐसा कभी संभव नहीं है। समय सार में खुद लिखा है ना, जिसका पद्यानुवाद अपन ने लिखा है कि क्रिया कांड सो ना मिले यह आत्म अभिराम, और ज्ञान कांड से सहज ही सुलभ आत्मा राम। किसी भी प्रकार के क्रिया कांड से इस भगवान आत्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आत्मा की प्राप्ति तो आत्मा के समझने से होगी, आत्मा में अपनापन होने से होगी, आत्मा का ध्यान करने से होगी, और कोई उपाय इस जगत में नहीं है। जरा मैं आपसे पूछता हूं कि आपको अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना है तो उसका क्या उपाय है? हमें अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना है तो मेडिकल में भर्ती होने के पहले एक प्री मेडिकल एग्जाम होता है। प्री मेडिकल होती है परीक्षा, कि मेडिकल में प्रवेश पाने के लिए एक प्रवेश परीक्षा होती है, तो उस प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती होंगे ना। और प्रवेश परीक्षा में प्रवेश करने का मौका कब मिलेंगे? तो जो 12वीं क्लास तक जो भी हो आपके साइंस बायोलॉजी वगैरह लेकर के होंगे तभी मिलेगी। और 12वीं क्लास की साइंस बायोलॉजी कब मिलेगी? जब 11वीं पास होंगे। और 11वीं में कब प्रवेश मिलेगा? जब 10वीं पास होंगे। क्यों? एक सुनिश्चित प्रक्रिया है कि नहीं है? अब मैं आपसे बोलता हूं कि आपका बच्चा तो 8वीं क्लास में फेल हो गया, फिर 9वीं में फेल हो गया, फिर मेडिकल में तो बैठ ही नहीं पाया प्री मेडिकल में। अब उस लड़के को हमें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना है, मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना है उस बेटे को, तो कितने दफे नमोकार महामंत्र का जाप करें? एक बार, एक लाख बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे तो बेटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाएगा कि नहीं? बोलो कोमल सिंह जी। अच्छा, 10 उपवास करेंगे तो हो जाएगा ना? 10 उपवास करेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाएगा? कितने तीर्थों की यात्रा करेंगे तो हो जाएगा, कितने का दान देंगे तो हो जाएगा, उस डोनेशन की बात नहीं कह रहा हूं मैं। जो घूस के नाम पर जो डोनेशन लिया जाता है उसकी बात नहीं कह रहा हूं मैं। है कोई ऐसा उपाय? कि एक ही उपाय है कि तुम सारी परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास होते जाओ और प्री मेडिकल टेस्ट में अच्छे नंबरों से पास हो, तो एक ही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो उपवास करना, नमोकार मंत्र का जाप करना, ये कोई उपाय नहीं है, है ना? लोक में हो तो बता दो, धर्म के क्षेत्र में ना हो कैसा? जैसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए जो आवश्यक एक योग्यता होती ना, जब तक वो क्वालिफिकेशन हम में नहीं हो तब तक हम उसमें मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं हो सकते हैं। तो जब तक इसमें भी एक क्वालिफिकेशन है ना, क्यों कि अपने आत्मा को जानना पहचानना, ये क्वालिफिकेशन जब तक नहीं होगी तुम एक लाख उपवास करो तो भी आत्मधर्म होने वाला नहीं है। उपनिषदों में एक कहानी आती है, बहुत ही मार्मिक कहानी है, कि एक ऋषि थे जो वैदिक संस्कृति है उसमें जितने साधु संत होते थे वे अपना आश्रम खोलते थे और उसमें गुरुजी सब विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। वो गुरुजी की पत्नी भी होती थी, उनके पुत्र भी होते थे, माने वो एक तरीके से ऐसे ही गुरुजी थे जैसे आपके विद्यालय के आपके गुरुजी लोग हैं। तो संत थे, उनका जीवन बहुत पवित्र था, शुद्ध सात्विक, उसके आधार पर ही वो ऋषि कहलाते थे। जैन दर्शन में तो ऐसा नहीं है, जैन दर्शन में तो नगम्बर सत्य साधना गुण स्थान में झूठने वाले संत गुरु कहलाते हैं और ये तो सब विद्या गुरु कहलाते हैं। तो उन ऋषि के खुद का एक सुपुत्र था और वो पढ़ने में किसी तरह मन नहीं लगाता था, इसलिए कोई भी उसने शिक्षा अर्जित नहीं कर पाई थी। उस गुरु के सैकड़ों शिष्य गुरु जैसे ही विद्वान बन के निकल गए थे उसके आंखों के सामने, लेकिन वो कुछ नहीं पढ़ पाया। गुरु जी ने बहुत समझाया उनके पिताजी ने, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आई। तो एक दिन उसके पिता को बहुत गुस्सा आया, तो उसने पीटना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं, उसने अपने बेटे को बुला के कहा कि बेटा तू गाय तो है नहीं, ये ऐसा लिखा है, वो ही शब्द में बोल रहा हूं आपको, संस्कृत में मैंने पढ़े हैं और सब आपको हिंदी में करके बता रहा हूं, कि तू गाय तो है नहीं जो तू दूध देगा, तू बैल तो है नहीं जो खेत में जोतने के काम आएगा, तू घोड़ा तो है नहीं जो सवारी के काम आएगा, तू शूद्र तो है नहीं जो दूसरों की सेवा करेगा, तू बनिया तो है नहीं जो तराजू तोल करके कमा के खा लेगा, तू कोई छत्री तो है नहीं जो युद्ध के मैदान में जाकर लड़ेगा सिपाही बन के। अरे तू तो ब्राह्मण का बेटा है और यदि तूने विद्या अर्जित नहीं की तो भीख मांगेगा भीख। ऐसे बहुत कठोर शब्द उन्होंने अपने बेटे से कहे सबके सामने, तो वो इतना अपमानित हुआ, उसे इतना अपमान फीलिंग हुआ अंदर में कि उसने वही प्रतिज्ञा की चोटी की गांठ खोल के, इस चोटी में गांठ तब लगाऊंगा और हे पिताजी आपकी शकल तब देखूंगा जब मैं आप जैसा विद्वान बन के आऊंगा, और गुस्से में अपने पिताजी के घर छोड़ के भाग गया। बस क्या प्रतिज्ञा करके गया, अपनी शकल तुम्हें तब दिखाऊंगा जब मैं तुम जैसा विद्वान बन जाऊंगा, भाग गया। मालूम सबसे पहली गलती क्या की उसने, कि जिस गुरु के पास तत्व ज्ञान की बात सीखने के लिए हजारों मील से लोग आते हैं, ऐसा गुरु उसे घर में ही सहज भाव से उपलब्ध था, बताइए ये कोई साधारण बात है? क्यों? कि ऐसा गुरु उसके घर में ही मौजूद था, उसका पिता स्वयं, तो कुछ नहीं पढ़ा। यानी इससे बढ़िया निमित्त और क्या हो सकता था, लेकिन उसकी बुद्धि पर ऐसे पत्थर पड़े कि जब पढ़ने का हृदय में संकल्प लिया, विकल्प आया, तो उस निमित्त से दूर भाग गया। और ये कोई असंभव बात नहीं है, ये आजकल ऐसा नहीं होता है। हम अभी तुमको डांट दें, फटकार दें और कहें तुमको निकाल बाहर करेंगे, तुम नालायक हो, पढ़ते नहीं हो, तुम समझते क्या हो, और जरा दो चार भाग दें तो गुस्से में आकर भाग जाते हैं। तुम जैसे बहुत पंडित देखे, मैं तुम जैसा विद्वान बन के नहीं दिखाऊं, तुम्हारे सामने मोर्चा नहीं खोलूं तो तुम समझते क्या हो? क्यों अब मोर्चा खोल के सामने तैयार हो जाते कि नहीं हो जाते? ऐसा उसने भी किया कि मैं ऐसा बनूंगा कि तुम जैसा विद्वान बन के आऊंगा जब तुम्हें सकल दिखाऊंगा। खैर यहां तक तो कोई बात नहीं थी। फिर वो गंगा जी के किनारे गए और ध्यान में बैठ गए, खाना माना छोड़ दिया और ये प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं विद्वान नहीं बन जाऊंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। वहां गजब हो गया। जो बात मूर्खता वहां की थी ना कि पिताजी को सकल तब दिखाऊंगा जब विद्वान बन के आऊंगा, तो वो तो कदाचित हो भी जाता, लेकिन दूसरी प्रतिज्ञा तो और गजब की ले ली। क्या? कि खाना तब खाऊंगा जब विद्वान बन जाऊंगा। विद्वान बनना एक दिन का काम है, इसमें तो बरसों लग सकते हैं ना। उबास बहुत, इंद्र का आसन कंप गया उसकी तपश्चर्या को देखकर। तो इंद्र बेचारा आया, बहुत समझाया कि बेटा विद्वान बनने का तरीका ये नहीं है, विद्वान तो एक एक अक्षर पढ़ करके बना जाता है, एक एक शब्द रटना पड़ता है, एक एक शब्द की स्पेलिंग तैयार करनी पड़ती है, रामा रामू रामा कितनी रटाई करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी विद्वान बन जाते हैं। क्यों? लेकिन वो नहीं माना तो नहीं माना। तो वो इंद्र जो था, जिसका आसन कब गया था, उसने क्या किया कि एक वृद्ध ब्राह्मण का बेस बनाया, और वृद्ध ब्राह्मण का बेस बनाकर वो वहीं पास में आया और नदी के किनारे की बालू अपने हाथ की मुट्ठियों में ले लेकर वो नदी में फेंकने लगा। नदी में बहुत जोर का बहाव आ रहा था, तो जितनी मिट्टी वो नदी में फेंकता उतनी मिट्टी पानी में बह जाती, और वो अपने बैठा था उपवास किए, ये मिट्टी फेंक रहा था, बहुत देर तक फेंकता रहा तो उससे नहीं रहा गया, और बोला ए बाबा, बुड्ढे बाबा क्या कर रहे हो? बोले गंगा जी का पुल बना रहा हूं। क्यों? कि उस पार जाना है। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, साल दो साल भी जिंदा रहने का ठिकाना नहीं। क्यों? और गंगा जी पार करना है, वो एक एक मुट्ठी बालू पे कर पुल बना रहा है, कब पुल बनेगा और कब ये गंगा जी पार होंगे? क्यों? तो बोले मैं गंगा जी का पुल बना रहा हूं। तो उन्होंने कहा गंगा जी पार करने का ये उपाय नहीं है, तुम एक मुट्ठी बालू फेंकते हो और वो पानी में बह जाती है, ऐसे पुल नहीं बनते हैं। पुल बनाने के लिए सीमेंट कंक्रीट के लिए कितने कितने क्या क्या करना पड़ता है तुम्हें क्या पता? तब वो बोला कि ठीक है, गंगा जी के पुल का पार तो ऐसे नहीं होते हैं मुट्ठियों से रेत डालने से, तो भूखे रहने से विद्वान बनते होंगे। क्या कहा? कि मैं तो मूर्ख हूं। उसने कहा अरे मूर्ख, तुम्हें क्या कर रहा है, ऐसे पुल नहीं बनता है। तो कहा तू बुद्धिमान है, मैं तो मूर्ख हूं। अरे पढ़ने का क्या तरीका है तुझे मालूम? और उसे ख्याल में ये बात आई और उसने फिर जाकर किसी योग्य गुरु के शरण में गया और उसने एक एक अक्षर सीखा, ख्याल में आया ना, और वो विद्वान बना और अपने पिता से भी ज्यादा महान विद्वान बना। उन दोनों ऋषियों के नाम आते हैं, मेरे को अभी स्मृति में नहीं है, लेकिन उनने उसमें ये बता दिया कि ज्ञान प्राप्ति करने का ये उपाय नहीं है, उपवास उपाय नहीं है विद्वान बनने का। तो जैसे विद्वान बनने का उपाय उपवास नहीं है, ऐसे ही आत्मा के ज्ञान करने का उपाय भी उपवास नहीं है, तीर्थ यात्रा नहीं है, समझे ना, खाना पीना छोड़ना नहीं है, नवोकार महामंत्र का जाप नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि कितने बार नवोकार मंत्र जपे तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाके वो डॉक्टर बन जाए, है कोई उपाय ऐसा? नहीं है उपाय ना। लेकिन हम लोक में तो कहीं मूर्खता नहीं करते हैं, लोक में तो हम पूरी तरह से सावधान हैं, वहां तो कभी कोई गड़बड़ी हमने नहीं की। क्यों? लोक में हमने कभी ऐसी गलती नहीं की कि बेटे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के लिए नवोकार मंत्र का जाप नहीं कराया। और कह दिया हो तो कराना शुरू भी कर दिया हो, लेकिन असली काम उन प्रोफेसरों के पास जाना, परीक्षा देना, मेडिकल को उसमें बैठना, वो काम भी बराबर कोशिश चालू रखते हैं। क्योंकि पक्का भरोसा होता तो अकेले नवोकार मंत्र के भरोसे बैठे रहते, तब हम जानते। क्यों बेटा बीमार हो जाए तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, नवोकार मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन नवोकार मंत्र भी पढ़ते रहते हैं और डॉक्टर के पास भी जाते रहते हैं। क्यों? अंग्रेजी दवाइयां भी खाते रहते हैं और होम्योपैथिक की गोलियां भी चट करते रहते हैं और आयुर्वेद वाले से भी कुछ ना कुछ उपचार लेते रहते हैं और झाड़ने फूकने वाले से भी, और आजकल तो ना मालूम बहुत बहुत हो गई, वो आ गए कौन 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 आ गए हैं, क्या बोलते, एक कुप्रेशर एक्यूपंचर, न मालूम कितने कितने आ गए हैं, और छह छह इलाज एक साथ चलते हैं हमारे। डॉक्टर जी की गोलियां भी चलती हैं, होम्योपैथिक की भी पतली पतली गोलियां भी चलती हैं, आयुर्वेद की दवाइयां भी चलती हैं। क्यों? और साथ में एक्यूप्रेशर भी चलता है और चुंबक चिकित्सा भी चलती है, जिससे हो जाए भगवान का ठीक है। और फिर दागे देव किसी देवता के नारियल माथा भी फोड़ के आ जाते हैं, महावीर जी के भी चक्कर आ जाते हैं, परंपरा के भूत भी भगा आते हैं। क्यों? सारे उपाय एक साथ कर लेते हैं। धर्म कहता है भाई, धर्म न बाड़ी नीपजे, धर्म न हाटे बिकाए, और धर्म विवेके नीपजे, जे समझे ते थाए। क्या? जो समझेगा आत्मा को वो धर्मात्मा हो जाएगा। धर्मात्मा होने का उपाय कोई बाहरी क्रियाकांड नहीं है, फिर तो वास नहीं है, पाठ नहीं है, किसी गुरु की कृपा नहीं है। क्या है? कि अपने आत्मा को जानना। इसलिए मैंने लिखा है, देखो पहली पंक्तियों में ही, निज आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है, निज आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है, शुद्ध आत्मा की साधना आराधना का मर्म है, और निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है। कैसी धर्म क्या है? कि निज आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है। बस अपने आत्मा को जानो, ये धर्म है। तो जानना भी अपने को है और जानेंगे भी अपन स्वयं, कि दूसरे को जाने के नहीं जाने के, जानो तो बहुत बढ़िया और नहीं जानो तो उससे भी बढ़िया। न पर को जानना धर्म है, न पर को नहीं जानना धर्म है। जानने में आ जाए तो कोई ऐतराज नहीं होना, जानने में नहीं आए तो कोई ऐतराज नहीं होना। क्या? सहज भाव से जो हो जाए, पर पदार्थ जानने में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और जानने में नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना आत्मा जानने में अवश्य आना चाहिए। हाँ, अपना आत्मा जानने में आना चाहिए, और जाने कौन? अड़ोसी पड़ोसी, गुरुजी, कौन जाने? कि जाने भी मैं ही, जानू भी मैं ही, और जानू भी मैं स्वयं को ही। निज आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है। क्या? दूसरे को जानना वो धर्म नहीं है।
वो जानने में आ जाए तो क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है।
जानने में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जानने में नहीं आए पर पदार्थ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना भगवान आत्मा जानने में नहीं आया तो धर्म नहीं होगा, और अपना भगवान आत्मा जानने में आ गया तो धर्म हो जाएगा। लेकिन अकेला जानने में आने से नहीं होगा, साथ में ये मैं हूं ऐसा विश्वास भी होना चाहिए, ऐसी प्रतीति भी होना चाहिए, ऐसी पहचान भी होनी चाहिए तो धर्म होगा। और उसी भगवान आत्मा का ध्यान भी होना चाहिए, उसी में भी जमना रमना चाहिए, ख्याल में आए ना, तब आत्मा का धर्म होगा। और वही सच्चा धर्म है, और वही उसका चिंतन करना ये वास्तविक धर्म भावना है। अब जिस रत्नत्रय धर्म का चिंतन करना धर्म भावना है, वो रत्नत्रय क्या है, वो सम्यक दर्शन क्या है, वो सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, इसकी चर्चा विस्तार से अपन कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।